ज्ञान जी मुंबई में रुकने के लिए मान गए थे। गौरवी जी ने उन्हें बिजनेस के नाम पर कन्विंस कर लिया था। वहीं आयु पहले अपना प्रोफेशन सही से सेटल करना चाहती थी, इसलिए उसका लंदन जाना जरूरी था। आयु आर्या के स्कूल जाने के लिए बाथरूम में थी, जबकि आरव बाहर उनके फ्लाइट के टिकट बुक करवा रहा था। आयु बाथरूम से बाहर आए तब उसने बाथरोब पहना था। वो अपने लगेज में से कपड़े निकाल रही थी, जिसमें से एक भी ड्रेस उसे ढंग का नहीं लग रहा था। आयु ने कपड़े देखकर सर पकड़कर कहा, अगर फिर से इनमें से कुछ पहना तो जरूर आरव टोंट पारेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। आयु वहां हैरान परेशान खड़ी थी, तभी आरव ड्रेस के साथ रूम में पहुंचा। आयु ने आरव के हाथ में ड्रेस देखा तो उसके फेस पर राहत के भाव थे। आयु आरव के पास गई और उसके हाथ से ड्रेस लेते हुए बोली, यू हैव सेव्ड मी। आरिशा के पसंद के कपड़े पहनना सच में बहुत मुश्किल है, कम से कम आर्या ऐसे तो नहीं करता। दोनों बच्चों को कंपेयर मत करो, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट है। जाओ जाकर चेंज कर लो, हमें लेट हो रही है, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आरव ने आयु को जवाब में कहा। आयु ने हाँ में सिर हिलाया और चेंज करने के लिए वार्डरोब की तरफ गई। कुछ देर में वो वापस बाहर आ गई थी। उसने ऑफ व्हाइट कलर का कोऑर्ड सेट पहना था। रेडी होने के बाद आरव और आयु आर्या के स्कूल में गए, जहां आर्या आज काफी खुश था। पहले जब भी कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तब आर्या के साथ कबीर या अयान होते थे। बहुत कम मौकों पर आरव उसके साथ जा पाता था, लेकिन आज उसके मॉम डैड दोनों साथ में थे और वो काफी खुश होकर अपने फ्रेंड्स को अपनी मॉम से मिलवा रहा था। आर्या के चेहरे पर स्माइल देखकर आयु भी काफी खुश थी। आरिशा और आर्या बच्चों के साथ बिजी थे। आयु आरव के पास खड़ी थी। उसने आरव का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, ये सच में मुझे बहुत मिस करता था, देखो ना कितना खुश है आज। हाँ वो तो है, अब इसे इसकी मॉम मिल गई और अब जो भी हो जाए हम कभी अलग नहीं होंगे, आरव ने आयु का हाथ सहलाकर कहा। आरव ने घड़ी में टाइम देखा तो कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट का टाइम होने वाला था। उसने आयु से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी हमने आर्या का परफॉर्मेंस लेटर ले लिया है, उसने काफी अच्छा किया है। हाँ लेकिन देखो ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ कितना खुश है, थोड़ा टाइम और यहाँ पर रुकते हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आयु ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो आयु से सब कुछ सरप्राइज रखना चाहता था, लेकिन अब उसे बताना ही पड़ा। आरव ने कहा, मिसेस खुराना जल्दी यहाँ से निकलो, थोड़ी देर में हमारी लंदन के लिए फ्लाइट है। अब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है कि यहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा। बोलते हुए आरव ने अपने मोबाइल की स्क्रीन आयु की तरफ कर दी, जिसमें उनके फ्लाइट टिकट्स का प्रिंट था। आयु ने हैरानी से टिकट को देखा और फिर आरव से कम बता तो देखे, मैं अपनी लीव एक्सटेंड करवा लेती, मुझे दादी के साथ टाइम स्पेंड करना था। अचानक मिले इस सरप्राइज से आयु के चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं थे। लगता है अब तो सब कुछ तुमसे पूछकर ही करना होगा, वरना तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह देखकर मेरा भी मूड खराब हो जाएगा। चलो अब चलते हैं, मैंने ड्राइवर को बोला था कि वो लगेज के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाए, आरव ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मजबूरन आयु को वहां से निकलना ही पड़ा। आरव और आयु दोनों बच्चों के साथ लंदन के लिए उड़ान भर चुके थे। शाम के लगभग 8 बजे के करीब आयु आरव के साथ ज्ञान जी के घर के आगे थी। वो जगह काफी शांत इलाका थी, उसे देखकर आरव काफी इम्प्रेस हुआ। ज्ञान जी का घर देखते ही आरव ने आयु की तरफ देखकर कहा, अब समझ आ रहा है कि तुम्हारा मेरे पास आने को मन क्यों नहीं करता था, इतनी अच्छी जगह पर रहने के बाद तो किसी का भी दिल ना करे। ऐसा कुछ नहीं है, आयु ने मुस्कुराकर जवाब दिया और घर को अनलॉक करने लगी। इस बीच आरव ने इधर उधर देखा तो सभी घरों के गार्डन आपस में जुड़े हुए थे और पार्किंग एरिया भी सेम ही था। आरव ने फिर आयु से कहा, तुम कहो तो हम यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। हाँ मॉम डैड सही कह रहे हैं, मुझे भी ये जगह पसंद आई, आरव के बाद आर्या ने भी वहीं पर रुकने की इच्छा जताई। आर्या के बाद आरिशा बोली, लेकिन मुझे इंडिया ज्यादा अच्छा लगा और दादी भी, मुझे उन्हीं के साथ रहना है, यहाँ कोई नहीं होता है, बस पूरे दिन बैठकर बोर होते रहो। मॉम तो हॉस्पिटल में बिजी रहती हैं, आसपास के पड़ोसी अपने कामों में बिजी रहते हैं, बस एक मिस्टर जैन ही हैं जो कभी कभार घर पर आ जाते हैं। आरिशा के मुंह से मिस्टर जैन का नाम सुनकर आरव समझ गया था कि वो लक्षित की बात कर रही है। आयु ने बातचीत का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन आरव ने आरिशा को गोद में उठाकर मुस्कुराकर पूछा, अच्छा तो तुम डॉक्टर लक्षित जैन की बात कर रही हो, कहाँ है उनका घर? वो हमारे घर आते रहते हैं तो आज रात हम उनके घर जाएंगे। इसकी क्या जरूरत है आरव, और तुम बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आयु ने आरव को आंख दिखाते हुए कहा। आरिशा ने लक्षित के घर की तरफ इशारा करके कहा, ये जो साइड वाला घर मिस्टर जैन का है, वैसे तो बहुत हैंडसम है, आपके जितने तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत है, आरिशा ने आरव के कान के पास आकर धीरे से कहा। ये लड़की आज मुझे मरवाएगी, आयु खुद से बड़बड़ाकर बोली। फिर उसने आरव की तरफ देखकर कहा, अब क्या पूरी जिंदगी यहीं रुकने का इरादा है या अंदर भी चलोगे? आरव आयु के साथ अंदर जा ही रहा था तभी पार्किंग एरिया में हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ना चाहते हुए भी उन सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लक्षित उस वक्त हॉस्पिटल से आया था, उसने अपनी गाड़ी पार्क की और घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर ज्ञान जी के घर के बाहर खड़ी आयु पर गई। आयु को देखते ही लक्षित के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और अब वो अपने घर जाने के बजाय आयु के घर की तरफ बढ़ रहा था। आयु आरव को अंदर खींच रही थी, लेकिन आरव ने उसका हाथ झटका और वहीं पर खड़े होकर लक्षित के आने का इंतजार करने लगा।
आयु आरव के साथ लंदन पहुंच चुकी थी। जब वो ज्ञान जी के घर के आगे खड़े थे तब उसी वक्त लक्षित हॉस्पिटल से वापस आया था। आयु को बाहर देखकर लक्षित अपने घर में जाने के बजाय उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। वहीं आयु नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी लक्षित और आरव का आमना सामना हो, इस वजह से वो आरव को घर के अंदर खींच रही थी। पर आरव लक्षित को देखकर वहीं पर रुक गया। लक्षित आयु के पास पहुंचा, उसका सारा ध्यान आयु पर था, इस वजह से उसने आर्या, आरव, यहाँ तक कि आरेशा को भी नहीं देखा था। वो आयु से मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर ओबेरॉय, फाइनली तुम्हारी लीव पूरी हो गई और तुम वापस लौट आई। कैसा रहा तुम्हारा वेकेशन? वैसे हॉस्पिटल में सबने तुम्हें बहुत मिस किया। लक्षित आगे कुछ कहता उससे पहले आयु जल्दी से आरव की तरफ इशारा करके बोली, इससे मिलो, ये आरव है और ये आर्या। लक्षित ने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाकर कहा, नाइस टू मीट यू। मिस्टर ओबेरॉय वापस नहीं आए? नहीं, वो वापस नहीं आए, क्योंकि वो अब वो वहीं पर रहेंगे। बस मैं, आरव, आर्या और आरेशा ही आए हैं, आयु ने मुस्कुराकर कहा। वो बार बार आरव का नाम ले रही थी ताकि लक्षित उससे कोई उल्टी सीधी बात ना कहे। आयु के मुंह से वापस आरव का नाम सुनकर लक्षित ने गौर से आरव और आर्या की तरफ देखा। उन दोनों की आंखें एक जैसी थी। फिर लक्षित का ध्यान आरेशा की तरफ गया तो उसने आयु से पूछा, ओ तो ये तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड है जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ दिया था? वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने ट्विंस डिलीवर किए थे और एक बच्चा इसके पास है। आयु लक्षित की बात का कोई जवाब देती उससे पहले आरव झट से बोल पड़ा, अच्छा तो इसने मुझे एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया था?
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आयु जल्दी से बोली। फिर उसने लक्षित की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कब कहा था कि आरेशा मेरे बॉयफ्रेंड की बेटी है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये मेरी शादी के बाद पैदा हुई थी और आरव मेरा हस्बैंड है।
ओके फाइन, एक ही तो बात है,
ये यहाँ वापस क्यों आया है? इसने तो तुम्हें धोखा दे दिया था ना, कहीं ये फिर से तुम्हारे साथ पैचअप करने का तो नहीं सोच रहा? बोलते हुए लक्षित ने आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। लक्षित और आरव की बातों से साफ था कि उनके बीच कोल्ड वॉर शुरू होने ही वाली थी। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और लक्षित से कहा, हम बाद में बात करते हैं, हम अभी अभी लंदन पहुंचे ही हैं, तुम हमें ठीक से आराम तो करने दो, तुम भी अपने घर जाकर रेस्ट करो और हमें भी करने दो। आयु वहां से जाने को हुई तभी लक्षित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम लोग अभी आए हो, थक गए होंगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम लोगों के लिए कॉफी बना दूंगा। लक्षित के इस तरह आयु का हाथ पकड़ने पर आरव उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। आयु ने अपना हाथ लक्षित के हाथ से अलग करके कहा, लिसन डॉक्टर जेन, शायद आपको याद नहीं है कि मैं वेकेशन पर इस वजह से गई थी क्योंकि आखिरी बार हम दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी और उसके बाद मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। अभी भी कुछ नहीं बदला है, मैं बस उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने आया हूँ डॉक्टर ओबेरॉय, लक्षित ने कंधे उठाकर कहा, पर फिलहाल मेरा मूड नहीं है, सो गेट आउट। इस बार आयु ने सख्त आवाज में कहा और जबरदस्ती आरव का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले लिया। आयु ने दरवाजा बंद कर लिया था। आयु के इस तरह अजीब बर्ताव करने पर लक्षित ने सिर हिलाकर कहा, अजीब लड़की है, अपने हस्बैंड के सामने इतना अनकंफर्टेबल कौन होता है, वो भी उसके साथ जिसके साथ डिवोर्स हो चुका हो, इसे तो उसे जलाने के लिए जानबूझकर मेरे पास आना चाहिए। लक्षित वहां से चला गया। वहीं अंदर आते ही आरव ने आयु की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। वो बच्चों के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आरेशा की तरफ देखकर कहा, आरेशा बेटा, तुम आर्या को अपना रूम नहीं दिखाओगी? और ये घर भी? सीधे सीधे कहिए ना डैड, आपको मॉम से कुछ बात करनी है और आप चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं, आरेशा ने जवाब दिया। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और वहां से उसे ले जाने लगी। बहुत स्मार्ट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सामने वाला इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है ये सब समझ जाती है, आयु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। आरव आयु की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था जबकि आयु डर के मारे अपने कदम पीछे ले रही थी। आरव तेजी से आयु की तरफ बढ़ा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। आरव आयु की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मिसेस खुराना, ये बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह, तभी बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने समझ लिया कि वो जबरदस्ती तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। चलो जाकर उसे बताते हैं कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो बच्चा पैदा करना तो दूर, तुम तो मुझे हक तक ठीक से नहीं करने देती, मैंने उसे क्लियर कर दिया है, अब तुम एक जेलस हस्बैंड की तरह रिएक्ट मत करो, आयु ने बात को टालते हुए कहा। आयु आरव से अलग होने की कोशिश कर रही थी, इस चक्कर में आरव ने उसे और कसकर पकड़ लिया। वो आगे बोला, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम दोनों के बीच ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से तुम्हें इंडिया जाना पड़ा। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने यही प्लान किया होगा कि तुम कभी इंडिया में कदम नहीं रखोगी और मेरी शक्ल तो भूल कर भी नहीं देखोगी। ओके फाइन, आयु ने गहरी सांस लेकर कहा और आरव को सब बताने लगी। ये सब हमारे एक कलीग की वजह से हुआ जिसने लक्षित को जाकर ये कह दिया कि मैं उसे लाइक करती हूँ। मैंने लक्षित को सब कुछ क्लियर कर दिया था, पर फिर भी हॉस्पिटल के ज्यादातर स्टाफ को यही लगता है कि मेरे और लक्षित के बीच में कुछ चल रहा है। एक्चुअली ये हॉस्पिटल में मेरे अलावा किसी से बात नहीं करता था, तो सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, ये जल्दी से किसी से बात नहीं करता। हाँ दिख गया मुझे इसका बिहेवियर, जो जल्दी से किसी से बात नहीं करता, 10 मिनट पहले ये तुमसे चिपकने की पूरी कोशिश कर रहा था, आरव ने सिर हिलाकर कहा और आयु को छोड़ दिया। आयु इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने आरव को शांत करते हुए कहा, ओके फाइन, मैं कल जाकर उसे सब सच बता दूंगी, ये भी बोल दूंगी कि हमारे बीच सब ठीक हो चुका है तो वो ये उल्टी सीधी हरकतें मत करे। आयु ने अपनी तरफ से बात को खत्म कर दिया था और उसे भी यही लगा था कि आरव ने अब इस बात को जाने दिया है। तभी आरव अचानक बोला, नहीं मिसेस खुराना, तुम उसे कुछ क्लियर नहीं करोगी,
मुझे देखना है कि उसके मन में क्या है। आयु हैरानी से आरव की तरफ देख रही थी। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। आयु ने सिर हिलाकर कहा, उल्टी सीधी हरकतें मत करो आरव, फिर बाद में मुझे मत कहना कि उसने कुछ कर दिया। तो नहीं कहूंगा, तुम उसे यही कहने वाली हो कि मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ और आरिशा से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसके अलावा तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरव ने आयु को सब कुछ समझा दिया था। वो ऐसा क्यों कर रहा था वो तो आयु को भी समझ नहीं आया। आयु आरव से इस बारे में कुछ पूछ पाती उससे पहले उनके घर की डोरबेल बजी। आरव ने आयु को वहीं पर रुकने का इशारा किया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि लक्षित ही वापस आया है। आरव का शक सही निकला। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने लक्षित कॉफी और कुछ स्नैक्स के साथ खड़ा था। लक्षित ने मुस्कुराते हुए आरव से हेलो कहा और बोला, जस्टिन इंडियन थिंग, अपने पड़ोसी की केयर करना, खासकर जब वो लंबे सफर से वापस आए हों। बोलते हुए लक्षित ने आरव को साइड किया और अंदर आ गया। वहीं आरव लक्षित को अब कुछ नहीं कह रहा था। वो उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था और आयु उन दोनों के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रही थी।